नमस्ते, मैं आराव हूँ। 9 Nut Tree के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। बिगिनर्स गाइड टू डिजिटल पेंटिंग इन फोटोशॉप सेकंड एडिशन 3D टोटल पब्लिशिंग द्वारा संपादित एक आरंभिक स्तर की शिक्षाप्रद कला पुस्तक है। इसका विषय फोटोशॉप के माध्यम से डिजिटल पेंटिंग सीखना है और इसका उद्देश्य केवल सॉफ्टवेयर के बटन पहचानना नहीं बल्कि उन्हें चित्र बनाने की व्यावहारिक प्रक्रिया से जोड़ना है। उपलब्ध विवरण के अनुसार पुस्तक इंस्टॉलेशन और आरंभिक कार्यक्षेत्र से शुरू होकर अपना पहला कॉन्सेप्ट बनाने तक मार्गदर्शन देती है। इसलिए इसका स्थान सामान्य फोटो एडिटिंग पुस्तकों से अलग है क्योंकि इसका केंद्र चित्रकार की कार्यप्रणाली, दृश्य निर्णय और क्रमिक अभ्यास है। दूसरा संस्करण होने के कारण यह पुस्तक मूल परिचय को अधिक व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करती है। पाठक को डिजिटल कैनवास, ब्रश, लेयर, रंग और आकृति जैसे आधारभूत घटकों को साथ लेकर काम करना पड़ता है। पुस्तक का उपयोगी पक्ष यह है कि तकनीकी विकल्पों को अलग थलग नियमों की तरह नहीं बल्कि वातावरण, वस्तु और कॉन्सेप्ट आर्ट जैसी दृश्य समस्याओं के समाधान के साधन के रूप में रखा गया है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, फोटोशॉप के कार्यक्षेत्र को चित्रकला के उपकरण में बदलना। पुस्तक का पहला महत्वपूर्ण आधार यह है कि फोटोशॉप को केवल तस्वीर सुधारने वाले प्रोग्राम की तरह देखने से डिजिटल पेंटिंग की समझ सीमित हो जाती है। आरंभिक पाठक के लिए इंटरफेस, कैनवास, पैनल और फाइल सेटअप अक्सर उतने ही कठिन होते हैं जितना स्वयं चित्र बनाना। इसीलिए इंस्टॉलेशन से शुरुआत का महत्व व्यावहारिक है। कलाकार को पहले यह समझना होता है कि काम की सतह कहाँ है, चित्र को किस आकार और गुणवत्ता में बनाना है तथा कार्यक्षेत्र को अपनी प्रक्रिया के अनुकूल कैसे रखा जाए। पुस्तक का निहित दृष्टिकोण यह है कि तकनीकी व्यवस्था रचनात्मकता की विरोधी नहीं है। सही दस्तावेज और व्यवस्थित कार्यक्षेत्र बाद में होने वाली रुकावटें कम करते हैं। उदाहरण के लिए, बहुत छोटे कैनवास पर सूक्ष्म विवरण बनाना या अनुपयुक्त गुणवत्ता में काम शुरू करना अंतिम परिणाम की उपयोगिता घटा सकता है। शुरुआती स्तर पर यह समझ खास तौर पर जरूरी है कि हर विकल्प तुरंत पूर्ण रूप से याद करना आवश्यक नहीं है। पहले उन नियंत्रणों पर पकड़ बनानी चाहिए जो चित्र के आकार, देखने की सुविधा और सुरक्षित प्रगति को प्रभावित करते हैं। इस तरह सॉफ्टवेयर का भय कम होता है और ध्यान वास्तविक दृश्य निर्माण पर जाता है। दूसरा, ब्रश और लेयर के जरिए नियंत्रित सुधारी जा सकने वाली प्रक्रिया। डिजिटल पेंटिंग की केंद्रीय सुविधा यह है कि कलाकार अपने निर्णयों को चरणों में बांट सकता है और पुस्तक का आरंभिक ढांचा इसी सोच के लिए उपयुक्त है। ब्रश केवल रंग लगाने का साधन नहीं है, उसका आकार, किनारा, अपारदर्शिता और दबाव जैसा व्यवहार सतह की अनुभूति तथा आकृति की स्पष्टता बदल सकता है। नए कलाकार के सामने समस्या विकल्पों की अधिकता होती है, इसलिए मुख्य सीख यह है कि अनेक सजावटी ब्रशों के पीछे भागने के बजाय कुछ भरोसेमंद ब्रश व्यवहारों से रूप, किनारा और बनावट नियंत्रित करना सीखा जाए। लेयर इस प्रक्रिया को दूसरी निर्णायक क्षमता देती है। अलग अलग हिस्सों को अलग स्तरों पर रखने से रेखाचित्र, रंग, छाया और संशोधन को स्वतंत्र रूप से संभालना संभव होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि अधिक लेयर अपने आप बेहतर चित्र बनाएंगी। अव्यवस्थित लेयर ढांचा भ्रम पैदा कर सकता है। उपयोगी पद्धति यह है कि हर लेयर का स्पष्ट कार्य हो और बदलाव करते समय उसके प्रभाव का पता रहे। यह संयोजन शुरुआती कलाकार को गलती मिटाने के बजाय उसे सुधारने की आदत देता है। पारंपरिक माध्यमों की तुलना में यह लचीलापन बड़ा लाभ है, लेकिन तभी जब तकनीकी सुविधा को सोच विचार के विकल्प के बजाय सोच को जांचने के माध्यम की तरह इस्तेमाल किया जाए। तीसरा, आकृति, मान और रंग से पढ़ने योग्य चित्र बनाना। किसी डिजिटल चित्र का प्रभाव केवल चमकीले रंगों या विस्तृत बनावट से तय नहीं होता। वह पहले अपनी बड़ी आकृतियों, रोशनी और अंधेरे के संबंध तथा रंगों की आपसी भूमिका से पढ़ा जाता है। पुस्तक का कॉन्सेप्ट निर्माण की ओर बढ़ना इस बुनियादी दृश्य साक्षरता को जरूरी बनाता है। यदि किसी वस्तु या दृश्य की बाहरी आकृति अस्पष्ट है तो अधिक विवरण भी उसे विश्वसनीय नहीं बनाएगा। इसी तरह मान अर्थात प्रकाश और अंधकार के स्तर रूप को आयतन और दूरी देते हैं। शुरुआती चित्रकार अक्सर रंग चुनने पर अधिक समय लगाते हैं, जबकि सीमित मानों में चित्र की स्पष्टता जांचना अधिक उपयोगी आरंभ हो सकता है। रंग का काम फिर प्रकाश का तापमान, वातावरण, सामग्री और केंद्र बिंदु सुझाना है। एक ही रंग हर सतह पर समान ढंग से नहीं दिखता, क्योंकि उसके आसपास के रंग और रोशनी की दिशा उसका प्रभाव बदल देते हैं। इस कारण रंग भरना और रंग से चित्र बनाना अलग बातें हैं। पुस्तक की आरंभिक प्रकृति का वास्तविक लाभ तब मिलता है जब पाठक हर चरण पर यह पूछे कि मुख्य आकृति पहचानी जा रही है या नहीं, रोशनी का स्रोत समझ आ रहा है या नहीं, और क्या रंग दृश्य के उद्देश्य को मजबूत कर रहे हैं, ये जान चित्र को सजावट से आगे ले जाती है। चौथा, पहले कॉन्सेप्ट तक पहुंचने वाली क्रमिक कार्य पद्धति। उपलब्ध परिचय में पहला कॉन्सेप्ट बनाने तक की यात्रा का उल्लेख पुस्तक की सबसे उपयोगी विशेषता है। कॉन्सेप्ट आर्ट का आरंभ किसी अंतिम चमकदार चित्र से नहीं, बल्कि विचार को शीघ्र दृश्य रूप देने से होता है। आरंभिक कलाकार के लिए एक जटिल दृश्य को सीधे अंतिम स्तर पर बनाना अक्सर निराशाजनक होता है, क्योंकि उसे एक साथ संरचना, वस्तुओं का अनुपात, रोशनी, रंग और विवरण संभालना पड़ता है। क्रमिक पद्धति इस बोझ को तोड़ती है। पहले मुख्य विचार और बड़ी रचना तय की जाती है, फिर प्रमुख आकृतियों का संबंध देखा जाता है, उसके बाद प्रकाश, रंग और चुनिंदा विवरण जोड़े जाते हैं। हर चरण पिछले निर्णय की जांच का अवसर देता है। यदि रचना छोटे आकार में नहीं पड़ती तो सूक्ष्म टेक्सचर जोड़ना समस्या हल नहीं करेगा। यदि वस्तुओं का अनुपात अस्थिर है तो प्रभावशाली छाया भी उसे छिपा नहीं सकती। यह प्रक्रिया कलाकार को समय बचाना भी सिखाती है, क्योंकि बड़े बदलाव आरंभ में सस्ते और तेज होते हैं। पुस्तक का मूल्य इसलिए अंतिम छवि की नकल में नहीं, बल्कि ऐसी कार्य श्रृंखला समझने में है जिसे अलग विषयों पर दोहराया जा सके। पाठक को हर अभ्यास में संदर्भ, उद्देश्य और प्राथमिकता तय करने की आदत विकसित करनी चाहिए। अंत में, तकनीकी निर्देशों को नियमित अभ्यास और व्यक्तिगत निर्णय से जोड़ना, यह पुस्तक शुरुआती मार्गदर्शक है। इसलिए इसकी सामग्री को किसी निश्चित शैली का विकल्प नहीं समझना चाहिए। फोटोशॉप के उपकरण, ब्रश और लेयर कलाकार को संभावनाएं देते हैं, लेकिन विषय चुनना, दृश्य का केंद्र तय करना और किन हिस्सों को सरल रखना अंततः कलात्मक निर्णय है। यही सीमा और यही उपयोगिता दोनों है। पुस्तक से पाठक को व्यवस्थित शुरुआत, सामान्य तकनीकी शब्दावली और अभ्यास का मार्ग मिल सकता है, पर मजबूत ड्राइंग, अवलोकन और रचना बोध केवल दोहराए गए काम से विकसित होते हैं। डिजिटल माध्यम में तत्काल पूर्ववत करने की सुविधा प्रयोग को आसान बनाती है, फिर भी यह अनिश्चित निर्णय को अपने आप सही नहीं करती। उपयोगी अभ्यास यह होगा कि पाठक छोटे विषयों पर एक ही क्रम अपनाए, जैसे सरल रेखाचित्र, सीमित रंग, स्पष्ट रोशनी और अंत में नियंत्रित विवरण। बाद में वह उसी विषय के वैकल्पिक रंग या रचना बनाकर अंतर देख सकता है। इससे सॉफ्टवेयर का प्रयोग और दृश्य सोच साथ बढ़ते हैं। पुस्तक का शिक्षण मूल्य इस बात में है कि वह तकनीक को परिणाम से जोड़ती है। उसकी सीमा यह है कि किसी भी आरंभिक गाइड की तरह वह निरंतर अभ्यास, वास्तविक संदर्भों के अध्ययन और अपनी त्रुटियों की समीक्षा का स्थान नहीं ले सकती। इसे आधार पुस्तक की तरह पढ़ना सबसे यथार्थवादी तरीका है। निष्कर्ष में, बिगिनर्स गाइड टू डिजिटल पेंटिंग इन फोटोशॉप सेकेंड एडिशन उन पाठकों के लिए सबसे उपयुक्त है जो फोटोशॉप में नए हैं और फोटो संपादन से आगे बढ़कर चित्र, वातावरण या कॉन्सेप्ट तैयार करना चाहते हैं। यह उन पारंपरिक माध्यमों के विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी हो सकती है जिन्हें डिजिटल कार्यप्रवाह, कैनवास सेटअप, ब्रश और लेयर की भाषा समझनी है। इसका व्यावहारिक लाभ यह है कि यह आरंभ को छोटे, संभाले जा सकने वाले निर्णयों में बांटती है। पाठक पहले उपकरणों और कार्यक्षेत्र का नियंत्रण सीख सकता है, फिर आकृति, मान, रंग और रचना को एक प्रक्रिया में लागू कर सकता है। इससे बिना योजना के प्रभावों और सजावटी ब्रशों पर निर्भर रहने की प्रवृत्ति कम हो सकती है। समान श्रेणी की अनेक पुस्तकों में या तो फोटोशॉप के आदेशों की सूची मिलती है या सीधे उन्नत कलाकारों के तैयार चित्रों पर जोर होता है। इस पुस्तक की अलग पहचान उसके आरंभिक स्तर और चित्रकला केंद्रित दिशा के मेल में है। यह सॉफ्टवेयर को स्वयं लक्ष्य नहीं बनाती, बल्कि उसे दृश्य विचारों को जांचने और विकसित करने का माध्यम मानती है। फिर भी पाठक को इससे त्वरित पेशेवर परिणाम की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। इसका सर्वोत्तम उपयोग तब होगा जब हर तकनीकी पाठ के बाद स्वतंत्र अभ्यास किया जाए, संदर्भों को देखा जाए और एक ही दृश्य के अलग समाधान आजमाए जाएं। इस दृष्टि से यह डिजिटल पेंटिंग सीखने की शुरुआत के लिए एक संरचित और यथार्थवादी आधार प्रदान करती है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं थ्री टोटल पब्लिशिंग, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेजॉन लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।